रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
रात्रि क्लास का भी नियम बाबा ने शुरू से बनाया है और उसमें विशेष जो पहले पहले रात्रि क्लास होते थे उसमें सेवा समाचार जो देश विदेश में सेवाएं चल रही हैं विशेष उनके ऊपर चर्चा होती थी। क्या क्या सेवाएं सब जगह चल रही हैं। बाबा के समय बाबा खुद क्लास में आकर के अपने बच्चों को बहलाते थे। रात्रि क्लास में जब तक दीदी रही 83 तक सभी मधुबन निवासी दीदी के साथ क्लास में उपस्थित होकर और सारे विश्व के समाचारों की सेवाओं की लेन देन करते रहे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम रात्रि में सवेरे की मुरली का भी रिवाइज कर लेते हैं। कितना याद रही, कितना उसके अनुसार हमारा पुरसार चला, स्मृति में सारी बातें आ जाती हैं। तो आज हम ब्राह्मण जीवन में सुख की अनुभूति कितना कर रहे हैं। वैसे तो बाबा की मुरली, आज की मुरली विशेष करके गीता के भगवान को कैसे सिद्ध किया जाए उस पर थी, बाबा का परिचय दिया जाए। लेकिन वरदान और स्लोगन बहुत ऊंची धारणाओं के थे। उसमें भी ब्राह्मण जीवन में सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव होता रहे। जितना जितना आत्मा क्रोध मुक्त माया जीत बनती जाती है, सुख की अनुभूति करती है। जो कार्य आत्मिक प्यार से हो सकते हैं, शांति से हो सकते हैं, स्नेह से हो सकते हैं, वो गुस्से से नहीं हो सकते, क्रोध से नहीं हो सकते हैं। क्रोध से कार्य बनता नहीं है, बिगड़ता है। और दूसरी बात, हमारी वृत्तियां इतनी पावरफुल, इतनी श्रेष्ठ हों जो हम किसी भी आत्मा को योग्य और योगी बना दे, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ इन्हीं दो बातों में समाया हुआ है। तो माताओं ने आज की मुरली सुनी थी, सुनी, चिंतन किया, चला चिंतन कुछ, भाइयों ने सुनी सबने। क्रोध से काम बिगड़ता है, स्नेह से कार्य बनता है। क्रोध मुक्त हम कैसे बने, कौन कौन से स्वरूप हैं क्रोध के, बहुत सी इस पर क्लासेज हुई हैं। बाबा कहता है ये बहुत बड़ा आप ब्राह्मणों के लिए शत्रु है। ऐसे काम महाशत्रु है, ऐसे क्रोध भी बहुत बड़ा शत्रु है। खुशी सुख की अनुभूति को गायब कर देता है। आत्मा की जो प्राप्तियां हैं, जिसमें वो संगम युग की प्राप्तियों में मौज का अनुभव करे, उसकी बजाय एक बार गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो जैसे क्रोध से खून जलने लगता है, ऐसी सारी आंतरिक प्राप्तियां, आंतरिक खुशी भी नष्ट हो जाती है। तो आज बाबा ने जो ये मंत्र पढ़ाया है कि अगर ब्राह्मण जीवन में सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो क्रोध को समाप्त करो, क्रोध जीत, क्रोध मुक्त बनो। सभी ने अपने आप को चेक किया होगा किन किन परिस्थितियों में क्रोध आता है और क्रोध के क्या क्या रूप हैं, कैसे इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्यों आता है आखिर, क्यों नहीं पीछा छोड़ता है ब्राह्मणों का भी। कहीं न कहीं से कभी न कभी उसका स्वरूप निकल ही आता है, कितना भी पुरुषार्थ करें। लेकिन कभी चिड़चिड़ेपन के रूप में, कभी मूड ऑफ के रूप में, कभी जिद और सिद्ध के रूप में, कभी घृणा और नफरत के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, आवेश के रूप में, मूड ऑफ के रूप में, कितने रूप में आता है। इसके रूप बहुत हैं, बहुत वैरायटी, बहुत बाल बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे रूप हैं उसके, जो सारे दिन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा भी कहीं पर खिट-खिट हो गई, संस्कारों का टकराव हो गया तो ये अपना रूप दिखा देता है, चेहरे पर आ जाता है, आंखों से दिखाई देने लगता है, चलन से दिखाई देने लगता है, बात करने के तरीके से दिखाई देने लगता है, झुलझुलाहट आ जाती है अंदर में। अगर हमने इस क्रोध रूपी भूत को जड़ से नहीं उखाड़ा है, समाप्त किया है, बाबा के प्यार में समा करके, स्नेह स्वरूप बन करके, अगर हम शीतल योगी नहीं बने हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल नहीं बनाया है, सरलता को धारण नहीं किया है, धैर्यता को नहीं अपनाया है, तो कहीं न कहीं से ये क्रोध अपना रूप दिखा देता है और उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है जो मन उदास हो जाता है, बात करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, किनारा करना अच्छा लगता है। एक क्रोध जिसका बड़ा रूप है हाथ पांव चल जाना, गुस्सा में कटु वचन बोल देना, कड़वे वचन बोल देना, मुख से ऐसे अच्छे अपशब्द निकल जाना जो किसी न किसी रूप में लोगों को दुख दर्द पहुंच जाए, अपना अंदर की स्थिति बिगड़ जाती है और दूसरा रूप आता है और चला जाता है, छोटे छोटे रूप में बहुत वार करता है। तो किस कारण से क्रोध आता है, कारण क्या है, है कोई कारण आता है भाइयों को कि नहीं आता है, कभी न कभी आ जाता है, माताओं को आता है। अच्छा, फिर किस रूप में आता है, क्यों आता है, संस्कारों में भरा हुआ इसलिए आ जाता है, कुछ तो कारण होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक क्लास में करा रहा था, एक हार्ट वालों का जो क्लास चलता है नीचे, एक माता हमारे पास आई और बोली मेरे पति इतना गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर, ज्ञान में भी हैं लेकिन इतना गुस्सा करते हैं जो उनके हार्ट पर एक इफेक्ट आ गया है, आप इनको कुछ समझाओ। बहुत उसको बेचारे को आ रहा था, तुमने कहा क्यों गुस्सा आता है, कारण क्या है, बोलने लगी कि मिलिट्री नेचर है, मिलिट्री के हैं रिटायर, और जब आते हैं बच्चों को देखते हैं कि वो कहना नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि जैसा मैं करता हूं ऐसा मेरे बच्चे करें, मेरे कुल का नाम बाला करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे कुल को आंच आ जाए, बहुत उनको ये ख्याल रहता है। और बच्चे आजकल के कैसे हैं, आज बाबा ने क्या कहा बच्चों को, बिच्छू टिंडन नाम नहीं दिया लेकिन एक दूसरे को काटने वाले हैं, मानने वाले नहीं है। तो उसने कहा कि उनको सहन नहीं होती ये बात कि मेरे बच्चे हैं, मैं घर का मालिक हूं और वो कहना मेरा नहीं मानते, इसलिए उनको गुस्सा आता है। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रेम स्वरूप बनाया है, जो प्रेम से बाबा को याद करते हैं, शांति सागर को, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रह करके याद करते हैं, उनका गुस्सा भी शांत होता जाता है, प्रेम की मूर्ति आत्मा बनती जाती है। लेकिन संस्कार कुछ ऐसे बन गए हैं पुरानी दुनिया के अंदर, जो कहीं न कहीं से गुस्सा प्रकट हो जाता है। और जब कोई अपने लौकिक परिवार पर अपना अधिकार समझता है, किसी पर भी अपना अधिकार समझता है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, मेरे अधीन है ये, मैंने इसको पढ़ाया है, लिखाया है, योग्य बनाया है, बड़ा किया है, जैसा मैं कहूं ऐसा ये करे, अधिकार रूप में ऑर्डर चलाते हैं और वो नहीं माना जाता है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता, स्वाभाविक रीति से आ जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, फर्ज है, फर्ज को निभाना, फर्ज अदाई वो पालन करना आपका फर्ज है, लेकिन आत्मा के पार्ट को ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता है। हर एक का अपना पार्ट है, अपनी शुभ भावनाएं जितना कार्य कर सकती हैं, जो आज बाबा ने कहा कि वृत्ति से अगर योग्य और योगी बना सकते हो तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, कहने से शिक्षा देने से कोई भी सुधरता नहीं है। आज के जमाने में शिक्षा का समय समाप्त हो गया है, लौकिक दुनिया में भी कोई शिक्षा सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए बाबा ने भी इस बार हम बच्चों को मुरली में ही बात कही थी कि लाभ ही कायदा भी नियम भी अगर बताना है तो ला के रूप में नहीं लेकिन लॉ के रूप में, ला और लॉ का बैलेंस हो, शिक्षा देने के साथ साथ सहयोग की भावना हो, तो ये स्वरूप जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, इससे क्रोध शांत हो सकता है, गुस्सा समाप्त हो सकता है। क्योंकि अगर हम सहयोग देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सबसे पहले जब हम अपने आप पर अधिकार रखते हैं, जिसको हम सुधार रहे हैं उसके गुस्से को हम हरना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, उसको हम सुधारना चाहते हैं, और सुधारने का तरीका अगर हमारा गुस्से का है, हम गुस्से में और दूसरे को सुधारना चाहते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए अगर आत्मा प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित हो करके, शुभ भावना रख करके, अपनी श्रेष्ठ वृत्तियां बना करके, इसके लिए ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर हम उस स्थिति में स्थित रह करके फिर कोई बात कहते भी हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर डायरेक्ट शिक्षा देते हैं, संबंध के रूप में अपने आप को जिम्मेवार समझ करके, हमने तीन कारण देखे, विशेष लौकिक परिवारों में जो गुस्सा आता है उसमें तीन कारण दिखाई देते हैं, एक अपने आप को बड़ा समझ करके जिम्मेवार मालिक समझते हैं और अपने अधिकार में सबको रखना चाहते, आर्डर में रखना चाहते, दूसरा कहीं न कहीं हमारी चाहनाएं बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, और वो चाहनाएं जब नहीं पूरी होती हैं, इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, तो गुस्सा आता है। चाहना रखते हैं हम अपने लिए भी बहुत कुछ, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो चाहनाएं भी बहुत होती हैं, तो भी पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कईयों के पास अधिक कार्य का बोझ है, अधिक बोझ है, जवाबदारियां अधिक हैं, बोझ अधिक है, तो उसके कारण भी समय पर कार्य नहीं हो पाता है, तो गुस्सा आता है। और कई अपने आप को ही जवाबदार समझ करके बैठे हुए हैं, मैं बड़ा हूं, अधिकारी हूं, इसलिए गुस्सा आता है। तो बाबा ने हम सबके गुस्से को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छी बात यही बताई है कि आप अपने को बहुत धैर्यवत, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सरल चित आत्मा अनुभव करो, और हर आत्मा के पार्ट को नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बन करके देखो, नॉलेजफुल बन करके कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है इस ड्रामा के अंदर, ज्ञान को यूज करना है, ज्ञान सिर्फ ऐसे नहीं है, सुन लिया हमने, लेकिन ज्ञान कहता है इसको यूज करो कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। जब तक हम इस स्थिति में नहीं रहते हैं तब तक हमारा संकल्प उनके प्रति चलता रहता है, और वो संकल्प न पूरा होने के कारण अंदर से गुस्सा आता है, या हम दूसरों से भेंट करते हैं, भेंट करके किसके पास ये है हमारे पास भी हो और वो नहीं हो पाता है तो अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, क्या करें हम। तो बाबा ने हम सबको क्रोध मुक्त रहने की, क्योंकि सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के लिए क्रोध मुक्त बनना ही होगा, अगर कोई भी प्रकार का अंश भी है इसका, क्योंकि कई बार हम दूसरों को बताते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हो, कई लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, कहते हैं बहुत शांति है, कौन सी शांति है, मसानी शमशान वाली शांति है, या ऐसे डेड साइलेंस है, सुखी सुखी शांति है, या आंतरिक खुशी वाली शांति, खुशी देने वाली है। इस बाबा के घर में, बाबा के स्थान में शांति के प्रकंपन अगर हैं, लोगों को फील होते हैं, तो उसमें पीछे पवित्रता है, शुद्धता है, निस्वार्थ भावनाएं हैं, और उस निस्वार्थ भावना के कारण, शुद्धता के कारण, पवित्रता के कारण सुख और शांति का वायुमंडल बन जाता है। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति का अनुभव नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में पवित्रता अथवा सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, लेकिन जो भी विकार है सूक्ष्म में भी छोटे बड़े, अगर हम उन विकारों को जीत लेते हैं हमारी पवित्रता खंडित नहीं होती है, तो आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकती है। सुख स्वरूप स्थिति के लिए ही बाबा ने इतना सारा खजाना दिया है, जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का, गुणों का, सर्व प्राप्तियां जो संगम युग पर बाबा करा रहे हैं, किस लिए? सुख स्वरूप स्थिति का आत्मा अनुभव करती रहे, सुख में रहे, अंदर अंदर सुख की महसूसता हो, बहुत समय के दुख समाप्त हो जाएं, दुखी होने की आदत पड़ी हुई है, किसी को कुछ देखते हैं ये दुख दर्द में है तो दूसरों के दुख को देख करके भी आत्मा दुखी हो जाती है, हमको कोई दुख दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा देख करके भी दुखी हो जाती है। दुख धाम के अंदर हर आत्मा कहीं ना कहीं अपनी भोगनाएं भोग रही है, और अगर हम उनको देखने लगे तो उनके दुख में हम भी दुखी हो जाएं, और अगर दुख में दुखी होने की आदत पड़ गई तो हम बाबा के समान दुख हर्ता नहीं बन सकेंगे। दुख हर्ता तभी बना जा सकता है जब आत्मा अपने सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रहे, सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रहे तो उनके दुख हर सकती है। तो दुखी हो करके डॉक्टर कोई पेशेंट के दुख को दूर करने के लिए खुद पेशेंट नहीं बन जाता है, बन जाता है क्या, खुद दुखी होता है क्या? दवाई देता है, उसकी सेवा करता है, उसको गाइड करता है ऐसा करो, लेकिन उसके दुख में खुद दुखी नहीं हो जाता है। तो बाबा ने भी हम सब के दुख हर करके कहा, बच्चे तुम सुख स्वरूप स्थिति में रहो, तुमने दुख की दुनिया छोड़ दी, दुख की दुनिया से तुमने किनारा कर लिया, तुम्हारे अंदर दुख का कोई संकल्प भी ना आए, लेकिन तब होगा जब तुम किसी को दुख नहीं दोगे। अगर तुम अपनी वाणी से भी किसी को दुख दे रहे हो, अपने संकल्प से भी दुख दे रहे हो, तो कई बार बाबा कहता है दुख देने वाला दुखी होकर के मरता है, खुद दुखी होता है। तो दूसरों को अगर हमारे द्वारा सुख नहीं मिल रहा है, हमारे अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे विचारधाराओं से, अच्छी सेवाओं से, अच्छी चलन से, अगर कोई आत्मा सुख का अनुभव नहीं करती है, किसी न किसी कारण से हम किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ बोल देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, हमारे बोल से भी कोई आत्मा दुख की अनुभूति करती है, तो दुख ही देना या दुख कोई फील कर लेता है तो उसके दुख की आह हमें सुखी नहीं रहने देगी। हम चाहते हैं हम सुखी रहें, लेकिन अगर हमारे द्वारा किसी भी एक्शन द्वारा किसी आत्मा को दुख मिला है और वो दिल से वो महसूस कर ली कि इसने मुझे दुख दिया है, क्या होगा? सुख में रह सकेंगे हम? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे हर बात पर ध्यान दो। कल बाबा का बहुत अच्छा वरदान था, बार बार स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग, ये दो पहरेदार हैं। ये दोनों हैं तो आपका सब खजाना सुरक्षित है, शांति का, प्यार का, सुख का, जो गुणों का खजाना है। इस खजाने पर ये दो पहरेदार चाहिए, नहीं तो कभी खुशी चली जाएगी, कभी शांति चली जाएगी, कभी प्यार चला जाएगा, कोई ना कोई खजाना माया चोरी कर लेगी। पहरेदार, चेकिंग, बार बार चेकिंग, ये मेरा खजाना कहीं से भी गुम न हो, ये बढ़े, ये दूसरों को मैं दूं, इसको बढ़ाऊं। तो बढ़ाने की विधि है देना, और संभालने की विधि है चेकिंग करना, अटेंशन रखना। तो ये संभाल करके रखें, ये हमारा अपना निजी खजाना है, ये जो बाबा ने हम सबको दिया है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, शांति स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में, सुख स्वरूप में, तो उसके पास एक खजाना जमा हो जाता है। तो जब हमारा खजाना जमा है तो हम देखें, कोई छोटी छोटी बातों में कोई ने इंसल्ट कर दी, कोई ने कोई बात कह दी, मेरा ये खजाना चोरी तो नहीं हो गया, गुम तो नहीं हो गया, खुशी गायब तो नहीं हो गई, अटेंशन, चेकिंग। तो ये कोई भी खजाना कहीं पर भी चोरी न हो जाए, ये हमारा हमारे पास रहे, और हम दूसरों को देख करके खुशी के दो शब्द बोल दिए, किसी को इज्जत चाहिए, कोई को प्यार चाहिए, कोई को सम्मान चाहिए, दे करके अपने खजाने को बढ़ा लिया, दान किया और हमारा खजाना बढ़ गया, शांति के वाइब्रेशन दिए और मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो गई। किसी को सुख दिया, अपने कर्म से दिया, बोल से दिया, दृष्टि से दिया, व्यवहार से दिया, सुख दिया, उसकी दुआएं मिली, रिटर्न में आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो गई। तो देंगे तो ये खजाना बढ़ेगा, अटेंशन रखेंगे, चेकिंग रखेंगे, तो इसकी कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। कभी छोटी छोटी बातें किसी भी कारण से, सारे दिन की दिनचर्या में अगर हम देखें तो कोई न कोई ऐसे कारण बन ही जाते हैं जो ये खजाना, कभी दुख की लहर आ जाएगी, कभी गमी की लहर आ जाएगी, कभी उदासी की लहर आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, है सब, बाबा ने सब दिया है, लेकिन अगर हमने उसका चिंतन नहीं किया है, उसको कार्य में नहीं लगाया है, उसको दूसरों को दान नहीं किया है, तो होते हुए भी उसकी खुशी नहीं, उसके सुख की अनुभूति नहीं है। इसलिए सुख की अनुभूति होती रहे, क्या करें, बार बार उसका चिंतन करें, उसका सुमिरन करें, उसको स्मृति में लाएं, उसको दोहराएं कि बाबा ने मुझे कितना दिया है। तो अगर प्राप्तियों को, संगम युग की प्राप्तियों को याद रखें, अपने भाग्य को याद रखें, भगवान मिला है, उसने इतना बड़ा भाग्य दिया है, इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, तो प्राप्तियों को याद करते करते आत्मा सुख स्वरूप खुशी की आंतरिक अनुभूति करती है, ये खजाना अंदर अंदर बढ़ता जाता है। दान देते हैं, दूसरों के दुख हर लेते हैं। तो हमारे पास जो कुछ है वो हमारा छिन न जाए कहीं भी, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से, सबके साथ पार्ट बजाते हुए, हर आत्मा के पार्ट को, हर आत्मा के संस्कारों को जान करके, समझ करके, इसका ये संस्कार है, इसकी बोलने की आदत है, इसकी चिड़चिड़ेपन की आदत है, आदत को जान लो, अपने आप को सेट कर लो, किनारा कर लो, अपने आप को सेफ कर लो, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना आ जाए। तो जो बाबा ने आज कहा है कि क्रोध जीत, माया जीत बनो, आत्मिक प्यार से काम लो, गुस्से से नहीं, चिड़चिड़ेपन से नहीं, जोश से नहीं, रोब से नहीं, ये सब उसके बाल बच्चे हैं। तो जब हम आत्मा अपने सरल स्वरूप में, शांत स्वरूप में, गंभीर स्वरूप में स्थित रहती हैं, हमारे अंदर धैर्यता का गुण है, सरलता का गुण है, सहन करने और समाने का गुण है, कोई बात आ गई समा गई, वर्णन करके हम फैलाते नहीं है जो दूसरा कोई गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर, कोई की बात सुन लिया आपने और दूसरों को सुना दिया, क्या होगा? जिसके कान में बात जाएगी वो आपसे बदला लेगा, तो बदला लेना भी तो गुस्सा हो गया ना, वो भी बदला लेगा, किसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, इसने मेरी बात क्यों फैलाई। तो इसलिए बाबा कहता है कि इसके लिए समाने की भी शक्ति चाहिए। तो जितने भी गुण हैं जो बाबा ने हम सबको दिए हैं, इनको संभालना है, इनको बढ़ाना है, एक कार्य में लगाना है, तो आत्मा अपने आप ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने इतना अच्छा श्रेष्ठ जीवन दिया है, पवित्र जीवन दिया है, हर पल सुख की अनुभूति होती रहे। हमारे सुख का तो गायन है क्या, अति इंद्रिय सुख किसका है, गोप गोपियों का। कौन है गोप गोपियां, कौन है, हैं? अगर भगवान के साथ पार्ट बजाने वाले गोप गोपियां, जिनका प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, वो भी सुख की अनुभूति न करे, बाबा के बच्चे बन करके हमारे हमें सुख की अनुभूति न हो, तो सारे कल्प में भी नहीं हो सकते, कौन कराएगा? खुशियों का भंडार हमारे साथ है, सुख का सागर हमारे साथ है, दुख हरता बाबा हमको मिला है, और फिर भी छोटी छोटी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, चिड़चिड़ेपन में आकर के हम अपनी खुशी के खजाने को, सुख के खजाने को गंवा दें, तो बाबा कहता है, बहुत बड़ा टाइटल कल दिया था बाबा ने, क्या, बक्तावर, बक्तावर माना तकदीर मान, देखना हो तो भी यहाँ देखो, और दूसरा क्या कहा, कहा नहीं, समा लिया अंदर, कि अगर भाग्यहीन कमबख्त भी देखना हो तो यहाँ देखो, अगर वो अपनी खुशी को गायब करते छोटी छोटी बातों में, तो बाबा कहता है ये तकदीर इनकी है, ये भी तकदीर है। तो बाबा ने हम सबको इतना ऊंचा तकदीरवान बनाया है, भाग्यवान बनाया है, हम अपनी तकदीर का अंदर ही अंदर गायन वर्णन, अंदर ही अंदर सुमिरन करते रहें, कितनी ऊंची तकदीर है जो भगवान के साथ भगवान के यज्ञ में रहकर खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतना ऊंचा भाग्य मिला है, उसके डायरेक्ट वर्षन हमारे कानों में जाते हैं। तो अगर हम अपने ऊंचे सम्मान को याद रखें, भाग्य को याद रखें, तो ये गुस्सा तो अपने आप भाग जाएगा, गुस्सा कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, किसी पर अपना अधिकार नहीं रखो, छोटे बन करके रहो, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हमारा जितना फर्ज है, बाबा भी देखो फर्ज निभाता है, बच्चों को गाइड करता है, रास्ता देता है, लेकिन कोई अगर नहीं मानता है, कोई गलत करता है, तो उसके दुख में, उसके पार्ट में खुद दुखी नहीं होता है, न्यारा भी है, प्यारा भी है। बाबा हम बच्चों को इतना श्रृंगार करते हुए भी, शिक्षा देते हुए भी, रास्ता बताते हुए भी निर्लिप्त रहता है, लिप्त नहीं हो जाता है। तो हम बच्चों को भी कहता, बच्चे सबके साथ पार्ट बजाते हुए, संबंध निभाते हुए, चाहनाओं को बहुत सीमित करो, बहुत कुछ नहीं चाहिए, चाहिए नहीं कुछ, जितना बाबा ने दिया उतना बहुत कुछ है हमारे पास, और किसी पर अपना अधिकार नहीं रखो, अपने कर्मेंद्रियों पर अपना अधिकार रखो, किसी के जिम्मेवार हम नहीं है, बाबा जिम्मेवार, बाबा के ऊपर जिम्मेवारियां दे दो, अपने आप आत्मा शीतल बन जाएगी। तो हम सभी बाबा से सरल शीतल सहज योगी का वरदान ले लें, ये वरदान अगर मिल गया कि हम सरल योगी, सहज योगी, शीतल योगी हैं, तो ये काया हमारी शीतल बन जाएगी, फिर हम शीतलता का, सरलता का लोगों को वरदान दे सकेंगे, अनुभूति करा सकेंगे, उनके गुस्से को भी हर लेंगे। हमारे अंदर ही गुस्सा होगा तो हम दूसरों के गुस्से को शांत नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि वृत्तियों को इतना पावरफुल बनाओ, जो दूसरी आत्मा योग्य बन जाए, योगी बन जाए, जो आप बनाना चाहते हो बन जाए, कहने से नहीं बनेगी। हमारी ऊंची भावनाओं से, हमारी ऊंची वृत्तियों से, हमारे अच्छे वाइब्रेशन से, हमारी शुभ भावनाओं से अन्य आत्माएं सीखने को उनको मिलता है और परिवर्तन कर लेती हैं। इसलिए इतनी ऊंची शिक्षाएं जो बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में देता है, उस पर हम मनन करें, चिंतन करें, अपने स्वरूप में ले आए, हमारा जीवन बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, आदर्श बन जाएगा। ओम शांति।